हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अबीर और जोया के बीच अस्पताल में ही हल्की फुल्की नोकझोंक होने लगी थी। अबीर ने जोया के लिए बहुत सारा खाना मंगवा दिया था, जिससे जोया को काफी चिढ़ होने लगी थी। जैसे ही जोया को पता चला कि रिया और अक्रम दोनों अस्पताल में एडमिट हैं, उसने अबीर से कहा कि उसे उनके पास ले चलें। अबीर ने उसे अपनी गोद में उठाकर वहां ले गया। जोया रिया को देखते हुए अक्रम से पूछी, भाई आखिर कब तक होश आएगा रिया को? अक्रम को डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में आ जाएगा। तभी रिया के शरीर में हलचल शुरू हुई और उसने अपनी आंखें खोल दीं। आंखें खुलते ही वो चिल्लाने लगी, नहीं मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। जोया और अक्रम रिया की बात सुनकर हैरान हो गए। अबीर भी रिया को इस तरह बोलते देख उसके पास पहुंचा और वहीं खड़ा होकर उसे देखने लगा। अक्रम रिया को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार यही बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मुझे जाने दो, मुझे बचा लो, वो मुझे ले जाएगा। जोया रिया की ये हालत देखकर काफी परेशान हो गई थी। अक्रम उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तब जोया ने रिया से कहा, क्या हुआ रिया, कौन ले जाएगा? यहाँ कोई नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, मेरी बात सुनो रिया, होश में आओ, क्या बोल रही हो? तब रिया ने जोया की दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, जोया की, जोया दी, वो आ गया है, वो ले जाएगा मुझे, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा, वो फिर से आपको और मुझे किडनैप कर लेगा, वो हमें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुँचा है, चलिए भाग चलते हैं यहाँ से, किसी और शहर में, किसी और देश में चलते हैं, जहाँ वो हम लोगों तक ना पहुँच सके। रिया बदहवास सी हालत में जो मुंह में आ रहा था वो बोल रही थी। अबीर के कानों में बार बार किडनैपिंग शब्द गूंजने लगा था। वहीं दूसरी ओर उस औरत के जाने के बाद अरमान आराम से बैठकर अपना खाना खाने लगा था। अभी वो थोड़ा बहुत ही खा पाया था कि तभी उसका सिर चकराने लगा और वो वहीं डाइनिंग टेबल पर बेहोश हो गया। वहीं दूसरी ओर अनुराधा शमशेर सिंह को किडनैप करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने अपने फिरंगी दोस्त को कह दिया था कि वो आज ही शमशेर सिंह को किडनैप कर ले, और उसका वो दोस्त अपना प्लेन रेडी कर चुका था। आज शमशेर सिंह के हेड ऑफिस से निकलते ही वो उसका पीछा करने लगा था, लेकिन शमशेर सिंह कोई मामूली आदमी नहीं था, वो पूरी टीम का हेड था। उसे एहसास हो गया था कि कोई तो है जो इस वक्त उसके पीछे था और उस पर नजर रखे हुए था। शमशेर सिंह ने किसी अनहोनी होने के डर से अपनी लाइव लोकेशन राजवीर को भेज दी थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस राजवीर को उन्होंने अपनी लोकेशन भेजी थी वो तो उस वक्त मेहर से लिपटा पड़ा था। राजवीर ने तो जैसे मेहर को एक खिलौना बना लिया था जिसका वो जब मर्जी यूज कर सकता था। उसने ठाकुर मैंशन में काम करने वाले सभी नौकरों को सकीना समेत छुट्टी दे दी थी, और मेहर को पता भी नहीं था कि अब ठाकुर मैंशन में कोई भी नौकर नहीं था। जब राजवीर ने उसे किचन में ही पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी थी, तब जाकर मेहर को एहसास हुआ था कि ठाकुर मैंशन में अब कोई भी नौकर नहीं था। और जिस वक्त शमशेर सिंह ने राजवीर को अपनी लाइव लोकेशन भेजी थी, उस वक्त भी राजवीर मेहर को नग्न करके उसके साथ बाथरूम में था, और कितनी देर तक अपनी मनमानी करने के बाद वो वहां से निकला था। और जैसे ही उसने बाहर आकर अपना फोन चेक किया, उसमें शमशेर की लोकेशन देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ गया और जल्दी से कपड़े पहनकर निकल गया। वहीं उस अफ्रीकी ने शमशेर सिंह को उसी की गाड़ी लिफ्ट मेने के बहाने से रुकवा लिया था। गाड़ी में बैठते ही एक रुमाल जिस पर क्लोरोफॉर्म लगा हुआ था वो शमशेर सिंह की नाक मुंह से सुंघा दिया था, और शमशेर सिंह अब बेहोश हो चुके थे। जिंदगी में पहली बार शमशेर सिंह बिना सिक्योरिटी के बाहर निकले थे, और वो अफ्रीकी जो काफी दिनों से उन पर नजर रखे हुए था उसने मौके का फायदा उठा लिया था, और आज ही उसने शमशेर सिंह को किडनैप करके अनुराधा के भेजे हुए एड्रेस पर ले गया था। वहीं दूसरी ओर अनुराधा का पहला और दूसरा यानी कि अरमान को किडनैप करने का प्लान काम कर चुका था। अरमान अब पूरी तरह से अनुराधा के कब्जे में था, और उसका दोस्त शमशेर सिंह जी को भी किडनैप कर चुका था। आज अनुराधा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, उसके दो जरूरी काम एक ही दिन में पूरे हो चुके थे। शमशेर सिंह उनको करीब आधे घंटे बाद होश आया था और उन्होंने अपने आप को एक कुर्सी से बंधे हुए पाया था और उनके ठीक सामने एक लैपटॉप रखा था जिस पर किसी की वीडियो कॉल आ रही थी। उस अफ्रीकी ने फ़ोन उठाया और वीडियो कॉल पर शमशेर सिंह को दिखाया और बोला, मैंने आपका काम कर दिया है, अब आप जल्दी आ जाओ और मेरी फ़ीस की दूसरी किस्त भी चुका दो। पहली किस्त में अनुराधा ने उसके साथ उस होटल में रात बिताई थी जिसमें राजवीर ने उसे पकड़ा था और उसकी दूसरी किस्त भी अनुराधा के साथ रिश्ता बनाने की ही थी। अनुराधा ने उसे कहा था कि जैसे ही वो वापस आएगी वो उसका सब हिसाब किताब बराबर कर देगी और उसने कहा, मुझे शमशेर सिंह से कुछ बात करनी है, लैपटॉप उसके सामने रखकर चले जाओ और उसके मुंह की टेप हटाना मत भूलना। रिया बदहवास सी हालत में जो मुंह में आ रहा था वो बोल रही थी। तभी जोया ने रिया के दोनों हाथ झटक दिए और उसे झिझोड़ते हुए तेज आवाज में बोली, होश में आओ रिया, क्या बोल रही हो तुम? रिया जोया की तेज आवाज सुनकर एकदम खामोश हो गई थी। तब अकरम ने उसे गले से लगा लिया और बोला, रिया तुम ठीक हो? कोई नहीं है यहाँ, तुम जोया को और मुझे बेहोश देखकर घबरा गई थीं और बेहोश हो गई थीं, तुम ठीक हो? रिया ने अचानक कहा, अकरम मैं तुम्हें या जोया दी को देखकर बेहोश नहीं हुई थी बल्कि अरहम ठाकुर को देखकर बेहोश हुई थी। क्या आ आ आ? जैसे ही रिया ने साफ साफ शब्दों में ये कहा तो जोया और अकरम के होश उड़ गए। तब जोया ने रिया से कहा, क्या कहा तुमने, वो यहाँ आया था? तभी जोया के दिमाग में एक बिजली सी कूंधी और उसे वो दो आंखें याद आईं जो उसने उस अस्पताल के स्टाफ में देखी थीं। तब अकरम ने कहा, नहीं रिया, तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई होगी, भला वो यहाँ कैसे पहुँच सकता है? तब जोया ने कहा, नहीं भाई, रिया को कोई गलत फहमी नहीं हुई है, वो यहाँ पहुँच चुका है और इतना ही नहीं, वो इस वक्त इस अस्पताल में भी मौजूद है। जोया की बात सुनकर अकरम और रिया चौंक गए, जबकि अबीर कन्फ्यूजन से उनकी ओर देखकर पूछने लगा, कौन यहाँ पहुँच गया है? कौन है वो जो इस अस्पताल में मौजूद है? आप लोग मुझे बताइए, क्या परेशानी है? अकरम ने अबीर को बात का जवाब नहीं दिया और जोया से बोला, अगर ये सच है कि वो इस वक्त इस अस्पताल में है तो वो आज मुझसे जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ऐसा कहकर अकरम उस वार्ड से बाहर निकल गया और अरहम को ढूंढने लगा, जबकि रिया और जोया शॉक्ड सी वहीं बैठी रहीं। अबीर भी अकरम के पीछे पीछे निकल गया ये जानने के लिए कि अकरम किसे मारने की बात कर रहा था, लेकिन अरहम तब तक उस अस्पताल से निकल चुका था। उसने जोया के अपार्टमेंट में रहने का इरादा छोड़ दिया था क्योंकि अबीर राठौर को देखने के बाद वो समझ गया था कि अकरम और जोया रिया का सामना करना अब उसके लिए आसान नहीं था। उसने तो सोचा था कि वो जाकर सीधे सीधे जोया और रिया से माफ़ी मांगेगा, लेकिन उसे देखते ही रिया का बेहोश हो जाना और जोया के साथ अबीर को देखने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया था। उसने फैसला किया था कि सबसे पहले वो अलग अलग उन तीनों से माफ़ी मांगेगा और उसके बाद अबीर राठौर से मिलेगा। कुछ भी करने से पहले वो अबीर राठौर और जोया के रिश्ते के बारे में पता करना चाहता था। वहीं अकरम ने पूरा अस्पताल छान मारा था, लेकिन अरहम उसे कहीं भी नहीं मिला था। अबीर ने कहा, किसे ढूंढ रहे हो तुम? एक बार मुझे बताओ, मेरे आदमी उसे पाताल से भी निकाल लाएंगे। तभी जोया बीच में बोल पड़ी, अबीर साहब रहने दीजिए, हमें किसी की भी मदद की कोई जरूरत नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है, हम लोग संभाल लेंगे। लेकिन इससे पहले कि अबीर कुछ बोलता, रिया बोल पड़ी, अबीर साहब क्या आप हमारी एक मदद कर सकते हैं? जोया रिया को घूर कर देखने लगी। तभी अबीर जल्दी से बोला, जी हाँ बताइए, क्या मदद चाहिए आपको? तब रिया ने कहा, क्या आप कुछ दिनों के लिए हमें अपने घर में रहने की जगह दे सकते हैं? रिया की बात सुनते ही जहां अकरम और जोया चौंक गए, वहीं अबीर के मन में तो मानो लड्डू फूटने लगे थे। तभी अकरम और जोया रिया को पकड़कर एक साइड में ले गए और बोले, ये क्या कह रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है, हम अबीर राठौर के घर में कैसे रह सकते हैं? तब रिया ने कहा, क्यों नहीं रह सकते हैं, क्या तुम दोनों को नहीं पता वो दोनों भाई कितने खतरनाक हैं? और जब वो अरहम ठाकुर हमारे फ्लैट तक पहुँच सकता है तो उसके लिए हमें एक बार फिर से अगवा करना कौन सी बड़ी बात होगी? रिया की बात सुनकर अकरम ने कहा, तुम फिक्र मत करो, वो नहीं आ पाएगा, मैं उसे ढूंढ कर जान से मार डालूंगा। रिया ने कहा, जब तुम उसे मार डालोगे तब हम फिर से अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं अब कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, मुझे लगता है अबीर जी ही हमारी मदद कर सकते हैं, उनके सामने तो कोई सिर तक नहीं उठाता है, उनके घर से ज्यादा सेफ जगह हमारे लिए और कहीं नहीं हो सकती है। और अभी वे लोग बात ही कर रहे थे कि तभी अबीर राठौर बीच में बोल पड़ा, आप लोग फिक्र ना करें, जिस भी आदमी को आप लोग ढूंढ रहे हैं वो बहुत जल्द मिल जाएगा, और जब तक वो नहीं मिल जाएगा तब तक आप तीनों अभी राठौर के मेंशन में रहोगे। अक्रम रिया की सेहत के साथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता था, सो उसने हाँ कह दिया था, जबकि जोया कड़ी कड़ी नजरों से उसे घूरने लगी थी।